أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله آج ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن تنہائیوں کا ساتھی. إن شاء الله جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے نصیب میں ہم اس کو لیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم صاد حروف مقطعات ہیں. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی بس آپ کا دل اس سے تنگی محسوس نہ کرے. بھیجی کیوں گئی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے وارن کیا جائے. اور کیا ہے یہ کتاب؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے تو یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے. کرو کیا؟ اتبعو پیروی کر لو، پیچھے چلو، فٹ سٹیپ کو فالو کرو. کس کے؟ مَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے. اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ یا اس کے سوا دوسرے اولیاء کی. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تھوڑے ہیں جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں. سورۃ الاعراف کے آغاز کی یہ چند آیات ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر کے پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میرے دل کی بہار. قرآن پاک کا لفظ آتے ہی دل میں جو محبت کے سرچشمے پھوٹنے چاہیے وہ اصل میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میری اس کتاب سے دوستی ہے. آج کے دور میں ہم سب بہت سارے شکوے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ یہ کرتے ہیں کہ رشتہ داریاں کمزور ہو گئیں، دوست مصروف ہو گئے، شوہر کمانے میں لگ گئے، بیویوں کی سوشلائزنگ بہت سی ہے، میں کس سے بات کروں؟ بلکہ میں اگر آپ سے اس بات کی تصدیق لے لوں تو کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ میں کسی سے اپنے دل کی بات کروں لیکن کوئی اویلیبل نہیں ہوتا؟ اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی ہمیں توجہ نہیں دیتا، لیکن زندگی وقت کے ساتھ ساتھ اتنی مصروف ہو گئی ہے، اتنا ایک انسان کو دنیا کی چیزوں نے مشغول کر دیا ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی ہی اولاد کو وقت نہیں دے پاتا. تو جب ایسے اوقات آئیں، جب ایسے وقت ہوں تو پھر ایک انسان کس طریقے سے کسی سے بات کرے؟ تو اس کا جواب ہے فی ہی ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پاک آج سے 20-25-30 سال پہلے تک اس کے بارے میں جو کانسیپٹ ہمارے کلچر میں تھا وہ کیا تھا؟ ثواب کی کتاب، ایصال ثواب، کوئی مر جائے ایصال ثواب کے لیے پڑھو، بیٹی کی شادی ہے تو برکت کے لیے پڑھ دو، اس کو سر پہ رکھو تاکہ اس کے سائے میں بیٹی رخصت ہو تو بہت ہی خوش رہے، قسم کی ضرورت پڑ جائے تو قسم کھا لو قرآن کی، اور خوبصورت جزدانوں میں سجا کر گھر کے بہت اوپر کے ایک خانے میں رکھتے تھے. اور قرآن پاک کا ظاہری ادب بہت زیادہ تھا، الحمدللہ آج بھی ہے، پہلے اس سے بھی زیادہ تھا. یعنی قرآن پاک کو ایک بند کتاب، ایک ہارڈ کاپی کی صورت میں ہم جانتے تھے. آپ کے گھر میں جہاں بھی قرآن پاک رکھا ہو یا تھا، کبھی یاد کیجئے، آپ اس جگہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ریسپیکٹ، عزت، ہولینس، ہے نا؟ اور یہ ہونا چاہیے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. لیکن اس کتاب کا مقام ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ایک بہترین دوست کا مقام بھی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے 20-25 لوگوں سے آپ ریسپیکٹ بھی کریں، کسی سے آپ فائدہ بھی لیں، किसी के साथ आपका लेन देन भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किसको देखकर होती है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को। किसके घर जाने की खुशी होती है? किसको अपने घर बुलाने की खुशी होती है? किसके लिए दिल की खुशी से पकाते हैं? किसके लिए गिफ्ट देना लेना पसंदीदा काम है? सब जानते है कि नहीं? इंसानों का मुकाम तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला की ये जो किताब है ना, ये खामोश नहीं है। कुरान पाक में आता है ये किताब हक के साथ बोलती है। एक सहाबी थे, उन्होंने कुरान पाक में ये आयत पढ़ी कि फी ही जिक्रुकुम, सूरत अल-अंबिया की आयत है, कि इस किताब में तो तुम्हारा जिक्र है। उनको खोज लग गई कि मेरा जिक्र इसमें कहाँ है। चूंकि कुरान को जानते थे, अरबी जुबान के साथ गहरा ताल्लुक था, कहने लगे चले मैं ढूंढता हूँ किधर है मेरा जिक्र। ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप इस वक्त सोचें कि आपको कोई कहे कि कल के अखबार में आपका नाम छपा है, और नाम भी खैर से बड़ी तारीफों वाला छपा है, तो आप अखबार कैसे पढ़ते हैं? खुर्दबीन के साथ ढूंढेंगे किधर है, फिर जहां आपका नाम होगा, जहां आपके कारनामों की दास्तानें होंगी, हो सकता है उस टुकड़े को बड़ा करके कहीं फ्रेम करा के लगा लें, है ना? अब जहां इंसान का अपना नाम होता है ना, उसको बहुत मजा आता है। ये शुरू से एक इंसान का वीक पॉइंट रहा। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों में अपना नाम लिखाने के लिए इंसानों ने जान जोखों में डाल ली। लंबी लंबी मूछे रखते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। क्यों? एक साल के लिए हमारा नाम दुनिया की किसी किताब में आ जाएगा। अब आप सारे इन सारी चीजों को सुनते वक्त सोचिए कि जब दुनिया की किसी किताब में हमारा जिक्र होता है और हमें कोई बता भी देता है, तो हमारे दिल की क्या हालत होती है? अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान में फरमाते हैं फी ही जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। जब आपका मेरा जिक्र है, तो सहाबी कहने लगे किधर है, ढूंढते रहे ढूंढते रहे। इतने में कुरान पाक की एक आयत आ गई सामने, ईमान वाले और अमल साले, और उनके लिए अल्लाह ने बेहतरीन जन्नतें और साबिकून अलवलून सूरह तौबा की आयतें। कहने लगे मैं ये तो नहीं हूं, अभी मैं खुद को ईमान के उन आला दर्जों पे तो नहीं पा रहा। अच्छा, फिर ढूंढते रहे पढ़ते रहे, नियत दिल में रखी, इरादा रखा, सोचा आगे गए तो एक आयत काफिरों की आ गई कि जो इस किताब के दुश्मन है और इस किताब के साथ बहुत सारे फितने खड़े करते हैं। खड़े होके सोचा मैं हूँ? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं इस किताब के साथ ऐसा मामला नहीं करता। खैर, फिक्र लग गई मैं हूँ किधर और कहाँ पे जाके नजर अटकी, सूरह तौबा की आयत, खलतु अमलन सालिहन व आखरा सईजिया। कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छे और बुरे अमल जमा कर दिए, मिला दिए, यानी कुछ नेकियां भी करते हैं, कुछ गुनाह भी करते हैं, ना नेकियां छुटती हैं ना गुनाह छुटते हैं। कहा कि ये हूं मैं, ऐ मालिक, ऐ मेरे रब, मैं अपने आप को पा गया, मैं अपने आप को पा गया। तो जब कुरान पाक को मैं और आप पढ़ें, तो हमारा उसके साथ जिंदा ताल्लुक होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पे एक दुआ है, वैसे भी मैं आप सबको रगबत दिलाऊंगी कि इस दुआ को आप क्यों कैसे याद करें, यानी इस वक्त अगर सिर्फ इस दुआ को हम फोकस करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी इंसान को लगता है, बल्कि मेरे उस्तादों में से किसी एक ने आज से बहुत साल पहले ये दुआ इस अंदाज से हमारे सामने रखी थी कि कभी किसी को ऐसा लगे कि हालात रुक गए हैं, और वाकई जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि कभी कभी लगता है सारे ही दरवाजे बंद हो गए, जिसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि मुसीबत तन्हा नहीं आती। कभी ऐसा होता है ना, बस आप देखिए कि मियाँ साहब की जॉब लगी हुई है तो सब चीजें ठीक लगती हैं घर की, ताल्लुक भी अच्छा है और सारे माशर्ती मामलात भी अच्छे गुजरते हैं। जरा मियाँ की जॉब जाए, थोड़े दिन बाद मियाँ बीवी के झगड़े शुरू, झगड़े शुरू तो बच्चों का इशू शुरू, और जब जॉब नहीं तो उसी दिन पता चला घर की मोटर खराब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक के साथ दूसरी चीज आती है। बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी में बाज मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आता क्या मांगू और क्या नहीं मांगू, किस दर को खटखटाऊं और किस दर से जाकर मैं सवाल करूं क्या करूं। तो कहा कि उस वक्त इस दुआ को पढ़ें। ये अहादीस की किताबों में हमारे सामने रंज और गम की दुआ में आती है, इसी तरह कुरान पाक की मोहब्बत के नाते से भी ये दुआ आती है। इसके बारे में एक हदीस जिससे हम सबको ये दुआ और इसकी फजीलत मिलती है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको वो हदीस पढ़ के सुना देती हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी को कोई गम या तकलीफ पहुंचे तो वो कहे ये दुआ जो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, और ये सारी दुआ पढ़ना इंसान के गम को दूर कर देगा और उसके गम को खुशी में बदल देगा, और यकीन करें, असल चीज तो यकीन ही है ना। आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो इसी तरह होगा। अब जो सोच मैं आज आपको देना चाहती हूँ इस दुआ के साथ और खुद को, वो अभी से देख लें। अभी तो सिर्फ अरबी है ना, मैं आपके सामने इस उर्दू का तर्जमा थोड़ा सा शेयर करूंगी। आप देखेंगे कि दुआ है रंजो गम को दूर करने की, बीमारियों परेशानियों दुखों तकलीफों को, बच्चियों के रिश्ते हो जाएं, लेकिन इसमें कोई चीज मांगी नहीं गई। आइए जरा थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं। मेरा दिल करता है कि आप में जो लोग लिख सकते हैं वो जरूर लिखें, क्योंकि लिखना जो होता है ना बंदे के जहन को जिमा देता है और फोकस्ड हो जाते हैं हम लोग। बड़ी आसान दुआ है तर्जमे के नाते से। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आप एक एक लफ्ज पे डूबिए। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अब्दु का तेरा बंदा हूँ, इब्नु अब्दी का बंदा हूँ तेरे बंदे का, यानी मेरा बाप भी तेरा बंदा था, इब्नु बेटा हूँ अमती का तेरी बंदी का, यानी मेरी माँ भी तेरी बंदी थी, नासियती मेरी पेशानी, पेशानी ये कहते हैं माथे को, फोरहेड, हम कहते हैं ना कि हमारी पेशानियों में लिखी हुई हमारी तकदीर, नासियती बियदिक तेरे हाथ में, यानी मेरी तकदीर भी तेरे हाथ में और मेरा माथा भी तेरे ही आगे झुकता है, मा दिन फी या हुक्मुक, जो भी है मेरे मामले में तेरा हुक्म, यानी मेरे मामले में तेरा ही हुक्म चलता है, मेरी पेशानी तेरे काबू में है, मेरे हक में तेरा हुक्म जारी है, यानी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चेंज हो सकती अच्छी या बुरी जब तक तेरा हुक्म ना आ जाए, अदलुन फी या कदाओ, अदल है तेरे फैसलों में। अभी इसकी तफसीर करते हैं, फिर आप देखिएगा कि इसमें कितने समंदर छुपे हुए हैं। मेरा दिल है कि आप तर्जमा एक दफा लिख लें। अस सलूका, मैं सवाल करती हूँ आपसे, बिकुल इसमें साथ हर नाम के, हुवला का जो तेरा है, यानी तेरे सारे नामों के साथ मैं तुझसे सवाल करती हूँ। वो कौन से नाम? समयत बिही नफसक, तूने रखा उनको अपने नफ्स के लिए, यानी तूने अपने जो नाम रखे हैं ना, मैं हर नाम के साथ तुझसे सवाल करती हूँ। और कितने नाम अल्लाह ताला के अमूमन हम जानते हैं, हालांकि अल्लाह ताला के सैकड़ों नाम है, अभी तो वक्त के साथ और भी खुल रहे हैं। तो क्या कहा, मैं तेरे सारे उन नामों के साथ तुझे पुकारती हूँ जो के तूने अपने लिए रखे, औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, या तूने सिखाया उनको किसी एक को अपनी मखलूक में से। अब इंसान नहीं, मखलूकात तो उसकी सैकड़ों हैं, हजारों होंगी, सबको जो जो तेरा नाम पता मैं उनके जरिए भी पुकारती हूँ, औ अनजल तहू फी किताबिक, या वो नाम जो तूने अपनी किताब में नाजिल किए, कुरान पाक में तेरे जितने नाम है मैं सब के जरिए तुझे पुकारती हूँ, अविस्तासर तबिही फी इल्मिल गैब इंदिक, या फिर वो नाम जिनको तूने अपने पास इल्मे गैब में उतारा है, यानी जिनको तूने दूसरों को नहीं बताया। इस तासर तक क्या होता है, तरजीह देना, असरा यू सिरु से, यानी कि आपने जिन नामों को हमसे छुपाया हुआ है वो भी सारे नाम, ऐसे लग रहा है बंदा अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ता है। और सब कुछ कहकर मांगता क्या है, अन तज अलल कुरआन रबी या कल्बी, अन ये के तज अला तू कर दे, तू बना दे अल कुरआना कुरआन को, रबी या कल्बी मेरे दिल की बहार, व नूर सदरी मेरे सीने का नूर, व जला हुस्नी और मेरे गमों की दुआ, व जहाब हम्मी और ले जाने वाला मेरे हम को। सारे को एक साथ पढ़ लें तो जरा देखिए कैसे बंदा बिछता जाता है। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरा बंदा और तेरे बंदे का बेटा और तेरी बंदी का बेटा हूँ। हम औरतें तो हम अपने आप को बेटी कह सकते हैं, हम अभी इसके लफ्ज के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे, लेकिन बास लोग इस दुआ को ऐसे भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अमतुक इब्नु अमतिक, लेकिन मुझे हमेशा वही दुआ के लफ्ज अच्छे लगते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। तो लिहाजा आप और मैं भी तो अल्लाह के बंदे ही हैं ना, बंदियां कह लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फरमाया कि ए अल्लाह, मैं बेशक तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा, तेरी बंदी का बेटा हूँ, मेरी पेशानी तेरे काबू में है, मेरे हक में तेरा हुक्म जारी है, तेरा फैसला मेरे बारे में इंसाफ पर मबनी है, मैं सवाल करता हूँ तेरे हर उस नाम के साथ जो तूने अपने लिए रखा, या तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया, या तूने अपनी किताब में उतारा, या तूने इसे अपने पास इल्मे गैब में रखने को तरजीह दी, कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर और मेरे गम को दूर करने वाला और मेरे फिक्र को ले जाने वाला बना दे। आप जरा सोचिए, मांगने वाले ने क्या मांगा। पहली चीज जो इस दुआ में मेरे आपके लिए तवज्जो की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक। चलिए, अब सबसे बेनियाज हूं, अपने ऊपर ले। मैं अल्लाह ताला को कहती हूँ कि अल्लाह मैं तो आपकी बंदी हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ। सच पूछिए, क्या हम बंदे हैं? आप कभी पाकिस्तान का वक्त याद करें, जब आप वहां थे, अभी भी जाते हैं तो आप ये मंजर हर घर में देखेंगे। सुबह 8-9 बजते हैं तो मासी आती है, सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह काम करती है, फिर भी उसकी मजाल नहीं है कि उन बर्तनों में खा ले जिसमें बेगम साहब खाती हैं। वो खाना जो आज मेहमानों के लिए पका है, उसमें से वो एक बोटी भी निकाल के खा ले, और वो सोफे पे बैठ जाए जो कि आम लोगों के बैठने के लिए है। यानी घरों में काम करने वाली मासियां और नौकरानियां जो हैं, हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज के दौर में। क्यों? कि गुलाम तो आपको पता है कि बिका होता था। हदीस में आता है कि जिस गुलाम ने अपने मालिक का हक अदा ना किया, उसने अल्लाह कभी ना किया। अगर एक गुलाम घर से भाग जाता है और आका को बताता नहीं, उसकी सारी इबादत नाकिस है। जब तक वो वापस ना आ जाए, उसकी इबादत उसके कानों से ऊपर नहीं जाती। तो क्या पता चला कि हम अल्लाह के गुलाम हैं? सच बताइए, अपनी औकात को देखें तो हमें अल्लाह की गुलामी का एहसास होता है? बहुत कम लोग ऐसे कि जो इस एहसास के साथ जीते हैं। आप देखिए कि एक इंसान है, जब उसको दुनिया में आने का मकसद समझ आता है, अल्लाह सुबहाना तला की कुदरत नजर आती है, तो फिर वो कहता है कि अल्लाह मेरी कोई औकात नहीं। जब सुबह बिस्तर से उठे तो खड़े होके कहा करें, अल्लाह बंदी हाजिर है, हुक्म कर। जैसे मासी आके पूछती है ना, बाजी बताएं क्या करना है। और आप जरा सा इमेजिन करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, फिर आप और मैं इस बंदगी को महसूस कर सकते हैं। आप कहीं जाने से पहले अपने घर में रखी हुई मेड या मासी को कहते हैं कि आज भिंडियाँ पका लेना, और साथ तुम रोटी बना लेना और सैलड काट लेना, और बाकी ये कि घर भी साफ कर लेना, मैं कहीं जाती हूँ। जब आप वापस आए तो आपको घर में से करेलों की खुशबू आ रही हो, और रोटियों की जगह आप देखें कि उसने बिरयानी बनाई हुई है। अब मुझे बताएं कि बिरयानी रोटी से ज्यादा शौक से लोग खा लेते हैं। यानी उसने वो नहीं किया जो आपने कहा, और वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकती थी, कि आप खुश होंगे? आप कहते हैं कि मैंने आपको कहा था भिंडी बनाएं, आपने क्या किया? कहती, बाजी मुझे भिंडियां नहीं पसंद तो मैंने नहीं बनाई। करेले क्यों बनाए? मुझे शुगर है तो मैंने कहा आप भी खा ले फिर। तो बिरयानी क्यों पकाई? मेरा दिल चाहा। आप मुझे बताएं, उसकी सारे दिन की मेहनत क्या आपको खुश करेगी? मेहनत तो बिरयानी पे ज्यादा हुई, करेले तो ज्यादा मुश्किल से पके। अब इसको अपने ऊपर लीजिए। हम एक मासी जिसको 1,000-1,200 रुपए देते हैं, हम उसकी थोड़ी सी भी मर्जी नहीं मानते, हालांकि हमें नजर आ रहा है कि उसने सारा दिन काम किया, पर हम कहते हैं वो क्यों नहीं किया जो मैंने कहा था। ये है अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक। बंदा अपनी औकात को पहचाने, अपनी मर्जी से इबादत करना, अपनी मर्जी के तरीकों को इख्तियार करना और अल्लाह सुबहाना ताला की मर्जी को छोड़ देना, अल्लाह को खुश नहीं करता। अल्लाह ताला ने हमें बंदगी के रंग में रखा, अपनी इतनी खूबसूरत किताब दी। अब अगर आप इस किताब को देखें तो ये कुरान क्यों नाजिल हुआ था? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान पाक इंसान की हिदायत की किताब है। हिदायत क्या होती है? जो इंसान को रास्ता दिखाती है। आपकी गाड़ियों में आजकल नेविगेटर लगे होते हैं, आप देखिए जिधर आपने जाना होता है उसका एड्रेस डालते हैं, फिर उसके बाद वो गाड़ी उधर से उधर आपको घुमाती भी ले जाती है जहां आप चाहते हैं। क्या एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके नहीं खड़ा करती? जिस तरह आम गाड़ियों के आज नेविगेटर और ये सिस्टम जो है, ये गाड़ी को एग्जैक्टली वहां खड़ा करते हैं। शर्त एक ही है कि जो मैप निकाला था आपने, उसको फॉलो करें। आप मुझे बताइए, अब यहाँ थोड़ा सा आपके तसव्वुर का इम्तिहान है। आपने जो मैप निकाला, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझते। मसा आप यहाँ रहते हैं, फ्रेंच में निकल आया आपका मैप और आपको फ्रेंच नहीं आती, आप कैसे जाएंगे? आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे ना कि जो उसको आपकी उर्दू या इंग्लिश, जिस जुबान को आप समझते हैं, उसमें ट्रांसलेट कर दे। ठीक है, ट्रांसलेट भी कर दिया, आप बैठे में उस नक्शे को अपनी गाड़ी की मेन विंडो के ऊपर चिपका दे, और तसव्वुर क्या करें कि मेरे इस मैप की बरकत से मैं उस जगह पहुंच जाऊंगी। पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। फिर आप कहते हैं कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, वो जो गाड़ी में एक शीशा लगा होता है ना, उसके नीचे एक काले रंग की डोरी में इस मैप को छोटा सा लपेट के किसी सिल्वर के खांतले में डाल के इसका तावीज बना के लटका देती हूँ कि आप उस जगह पहुंचेंगी। आपको उस जगह पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस मैप को निकालना है,
डायरेक्शन टू जन्ना, रोड टू जन्ना। ये सबीलुल जन्ना क्या है? जन्नत का रास्ता है। आप और मैं जन्नत में जाना चाहते हैं अगर, तो उसका रास्ता कौन बताएगा? जालिकल किताबुल्ला रैबा फी हुदा लिल मुत्तकीन। ये किताब बताती है कि जन्नत का मौसम कैसा है, ये किताब बताती है रास्ते कैसे हैं, वहाँ क्या करेंसी चलती है, यहाँ से क्या लेकर जाओ। किसी एक मुल्क में जाना, आप वहाँ के कई चीज़ों को नोट करते हैं। टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का एटमोसफियर क्या है, वहाँ लोग क्या खाते हैं, वहाँ के लोगों की क्या पसंद नापसंद है। ये कुरान अल्लाह ने मुझे आपको दिया था कि जिंदगी भर किसी दूसरे से पूछे बगैर हम इस किताब पर एतमाद करते करते जन्नत में पहुंच जाएं। अफसोस के साथ हमारे उर्दू कल्चर ने इसको वजीफों की किताब बना दिया, जिन भूत भगाने की किताब बना दिया। अगर किताब गिर जाए तो इसका वजन तोल तोल के हम देने को पसंद करते हैं। हम इसके साथ कई और काम लेते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई लेता तो लेता रहे, बट जो असल मकसद था वो भूल गया। और वो क्यों भूला समझ नहीं आती। बस आप देखिए कि आप सबको उर्दू आती है ना, मुझे आपके चेहरों से लग रहा है आपको उर्दू आती है। वजह, आप तवज्जो से सुन रहे हैं। अगर आपको उर्दू समझ ना आती तो क्या आप मेरे साथ इतनी देर सब्र करते? आप बेचैन हो जाते, आप परेशान हो जाते, आप एक टांग उठाते दूसरी उठाते, कितनी देर आखिर कोई सब्र करके बैठ सकता है? आप उठ के चले जाते। बच्चे क्यों रोते हैं कुरान की क्लासेस में? उनको बेचारों को समझ नहीं आ रहा होता। कोई दूसरा भी होगा वो कहेगा इससे तो बेहतर है कि मैं जाके दो नफिल ही पढ़ लूं जो मुझे समझ नहीं आता। तो जो कुरान का आज के दौर में छुपा हुआ पहलू है वो क्या है कि हम इस किताब को समझ नहीं पाते। आप कहते हैं कुरान मेरी तन्हाइयों का साथी, अंतज जलिल कुरान अलजीम अरबी अकल्बी व नूर असदरी व जला हुजनी व जहाब गम्मी व हम्मी। मान तो आप इतने कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी दोस्त की जुबान ही नहीं आती। आप मुझे बताइए कि आप अपनी किसी दोस्त के साथ बैठें और हर बात कर दें दिल की, और बाद में आपको पता चले कि आपकी दोस्त को तो आपकी लैंग्वेज ही नहीं आती, क्या फायदा होगा? और कोई दोस्त अपनी दोस्त से या आपसे घंटों बात करे लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, दोस्ती हो सकती है? आज इस किताब के साथ दोस्ती से ज्यादा रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, मोहब्बत भी हमें इससे बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी ताजीम भी बहुत करते हैं बट हम इसको समझ नहीं पाते। कुरान पाक का कुछ हिस्सा आज सुबह आपने पढ़ा होगा ना, फजर के बाद किस किसने कुरान पढ़ा, हाथ खड़ा करेंगे? चलिए, काफी हैं हाथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफी ने नहीं भी पढ़ा। ये हमारी शुरू से रिवायत रही ना कि सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ा जाता है। ये बताइए कि फजर की नमाज में आप में से 5 सिस्टर्स बताएं कि उन्होंने दोनों रकतों में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी। पहली में कौन सी पढ़ी जी, आप बताइए।
पहली
सूरत सूरत कासर, सूरत कासर जी, आपने कौन सी पढ़ी?
मैंने सूरत काफिरून सुन्नत में पढ़ी थी, और उसके बाद सूरह इखलास, और जो पढ़ रहे हैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी थी।
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या पढ़ा था?
सूरत इखलास, सूरत काफिरून।
सूरह काफिरून जी, आप बताइए। कितने लोग हैं इधर जिनको याद ही नहीं कौन सी पढ़ी थी, वो हाथ खड़ा करें। सच बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको नहीं याद कि मैंने आज कौन सी पढ़ी थी, क्योंकि कई घंटे गुजर गए, अब तो जोहर भी हो गई है। याद है सबको। ये बताइए कि जो पढ़ा है, जो सूरत पढ़ी है, उस पर गौर किया, तवज्जो भटकी? सूरत मुजम्मिल आपने पढ़ी, आपको उसका तर्जमा समझ आ रहा होगा। शुरू की वहियों में से एक वही है, 100 बातों की एक बात। जब तक कुरान पाक मुझे समझ नहीं आएगा मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकती। अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि अंतज जलिल कुरान अलजीमर बी अकल्बी, दिल की बाहर कुरान कैसे बनता है? मैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल देती हूँ, एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। आप देखिए कि जब दिल बहुत भरा होता है तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर जाके मैं किसी के सामने दिल हल्का कर दूं। वो अलग बात है कि हम गीबतें करने को भी दिल हल्का ही कहते हैं, चुगलियां करने को भी हम दिल हल्का करने के नाम पे कहते हैं। और मजे की बात यह है, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि अपना दिल हल्का करते करते अगले का तनु भारी कर दो। मसलन जैसे बस बीवियां अपना दिल हल्का करती हैं तो शौहरों के दिल भारी हो जाते हैं, फिर वो अपनी माँ बहन के खिलाफ हो जाते हैं, है ना? जब भी किसी से बातें करने को दिल करे तो इस कुरान से बातें करें। एक वाक्य आपने बहुत दफा सुना होगा, मैंने खुद भी उस पर बहुत दफा दस दी है, लेकिन सिर्फ एक शऊर बेदार करने को उसकी चंद बातें अगर आपके साथ शेयर करूं तो फिर मैं और आप अपना तकाबुल कर सकते हैं। कि आपका मेरा इस कुरान के साथ क्या ताल्लुक है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्ला एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा सहराई सफ़र था, उसमें एक औरत उनको नजर आई। और ये वो दौर था कि जो एक दफ़ा काफले से बिछड़ता उसको कुछ याद ना रहता, मतलब वो अब गया समझे। जो हर वक्त इस ख्वाहिश में होते थे कि हम काफले के साथ रहें, और ये सच है, तन्हा भेड़ जो होती है ना उसको भेड़िया खा जाता है। जब ये कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक औरत है, करीब हुए, कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कहने लगी सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। कहने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। कहने लगी मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लहू, जिसको अल्लाह भटका दे उसको कोई राह नहीं दिखा सकता। कहने लगे कमाल है, आई किधर से हो। कहने लगी सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। समझ आ गई उनको कि ये मुल्क शाम से मस्जिद अक्सा के पास से। खैर, कहने लगे कि इधर आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे काफले के साथ पहुंचा देता हूँ। पूरी इस पे एक दर्स भी है कुरान मेरी किताब, उसमें मैंने इसको पूरा कोट किया हुआ है। जब वो उसको कहने लगे कि तुम इधर कैसे आई, तो उसने कुरान की आयत पढ़ी कि सितारों से राह पाते हैं हम, बता दिया कि मैं बिछड़ गई हूँ काफले से। कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पे पहुंचा देता हूँ। अब क्या हुआ कि जब वो उसके पास ऊंट लाए तो वो उस पे बैठने लगी, तो कहने लगी अल्लाह अकबर सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब जब वो सवारी पे बैठी तो ये चल रहे हैं। तो अमूमन आपको होता है कि सफर के दौरान इंसान ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बातें करता है। तो कहने लगे कि अम्मा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा कौन है। तो सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़ने लगी वला तकफुमा लैसा लक, तू क्यों उस बातों के पीछे लगता है जिससे तेरा कोई मतलब ही नहीं है। अब वो चुपके होके बैठ गए। फिर जब उनके घोड़े को या ऊंट को जो भी था उसको जरा सी ठोकर लगी तो उन्होंने कुछ जरा सी उसको डांटा अपनी सवारी को, तो अम्मा जी ने उनको डांट दिया। कुरान की आयत में जो आयत पढ़ते हैं अम्मा जी उसका जवाब कुरान में देती है, बड़े हैरान हुए। इतने में दूर एक काफला था, उसके करीब पहुंच गए। अम्मा ने हाथ के इशारे से बता दिया कि यही काफला है। कहने लगे कि अब मैं किसको बुलाऊं, इधर बता तेरा इसमें कौन है। अम्मा ने वहीं खड़े खड़े कुरान पाक की वो आयत पढ़ी जिसमें तीन नबियों का जिक्र है, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा और एक और नबी का। जो ही अम्मा ने वो आयत ऊंची आवाज से पढ़ी तो काफले में से कड़ियल जवान तीन आ गए, समझ गए वो अम्मा के बेटे हैं। खैर मिले बैठे, उनको बिठाया तो कहने लगी अपने बेटों को सूरत काहफ की आयतें पढ़ के कि जाओ तुम में से कोई पाकीज़ा खाना लेकर आए। वो खाना लेकर आए तो वो बुजुर्ग के सामने रख के कहने लगी कि कुलू वशरबु हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्याम अल हालिया, खाओ और पियो उस बदले में जो तुमने पिछले दिनों में मेरे साथ नेकी की, हालांकि ये जन्नतियों को सुनाई जाएगी। अब तो उनसे रहा ना गया, कहने लगे एक बात तो बताओ, पिछले कई दिन से मैं तुम्हारी माँ की जुबान से सिर्फ कुरान सुन रहा हूँ, मैं जो बात कहता हूँ ये कुरान से जवाब देती है, ये क्या बात है। तो उनके बेटों ने क्या कहा, आप सिर्फ एक हफ्ते की बात करते हैं, हमने पिछले 40 साल में अपनी माँ की जुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना। ये है अंतज जलिल कुरान अलजीम कल्बी, और ये है कुरान मेरे दिल की बहार, और ये है कुरान मेरी बेहतरीन दोस्त। जब तक आपके मेरे कुरान पाक के साथ ताल्लुक की ये बुनियाद नहीं बनती, हम लोगों को ढूंढते हैं। आप देखिए कि हमें दोस्त चाहिए होते हैं, बाज दफा हम दुखी होते हैं, हम कहते हैं शौहर पास हो उनको बताएं, माँ याद आ जाती है कभी, किसी को भाई याद आ जाते हैं, किसी को बहन आती है, इनमें से कोई भी हर वक्त अवेलेबल नहीं है। आप इस किताब की बस जुबान समझ लें, आप इसकी जुबान समझेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये किताब आपको दुख सुख करना सिखा देगी। मसलन आप के ऊपर कोई गम आ गया, समटाइम मिसाल लेती हूँ, आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया, एकदम लगा पता नहीं किधर चला गया, बच्चा खो गया, आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम याद आ जाएंगे। फौरन आपके अंदर से आवाज उठेगी, हाँ याकूब का बेटा भी खो गया था। जब याकूब का बेटा याद आएगा तो जो याकूब ने कहा था वो आपकी जुबान में आएगा, इन्ना माशको बसी व हुज़नी इल्लल्लाह, मेरे तो शिकवे शिकायत और मेरे गम की सारी फरियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है। आपकी बच्ची का रिश्ता आ जाएगा, आप कहते हैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्या मैं आ रहा है, आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियों का रिश्ता याद आएगा। आप देखेंगे ये कुरान उंगली थाम के आपको जिंदगी के हर दुख और सुख पे गाइड करेगा। और यकीन करें, मैं आपको ये नहीं कहती कि इसको पढ़ने से इतना फायदा, इतना सवाब, इतने महल जन्नत में, एक एक लफ्ज़ पे दस दस नेकियां, ये तो है ही, इस पे तो हमारा ईमान है कि बगैर समझे भी अगर हम इस कुरान पाक को ठीक पढ़ते हैं तो इसका अजर तो है। बट अजर तो एक अजर है ना, अजर ऐसे जैसे पैसे हैं। आपकी जेब में 10 यूरो हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, क्या फर्क पड़ता है? भूख लगी हो तो खाना ना मिले, नींद आई हो तो बिस्तर ना मिले, कोई आपका साथ ना दे, रात को आप भटक जाए और आपकी जेब में 1000 यूरो है, जरा सोचे क्या हाल होगा? अपने से ज्यादा माल की फिक्र होगी और माल से ज्यादा अपनी जान की फिक्र होगी, राइट? क्यों? कि ये बेजान चीजें हैं। लेकिन जब आपके साथ कोई साथी होता है जिससे आपको प्यार है, जिससे अपना दुख सुख है, तो उसके लिए आपका मेरा दिल खुल जाता है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमारे लिए इस कुरान को हकीकत में एक जीती जागती चलती फिरती किताब बना। ये कैसे होगा? दुआओं से, मौजज़ों से, अचानक सोते खाते पीते नहीं, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आप देखिए कि मैं अपने दिल से ये बात कहती हूँ और ये हदीस मेरी आंखों के सामने होती है कि मोमिन वो है जो दूसरे के लिए भी वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है।